हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इधर नम्या के साथ ऑफिस से निकलकर अनिकेत उसे उसके घर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन नम्या ने उसे कुछ देर बाद घर जाने के लिए कहा और अनिकेत उसकी बात मानते हुए एक पहाड़ी नुमा जगह पर अपनी गाड़ी मोड़ दी और कुछ दूरी पर जाकर अपनी गाड़ी रोक दी। वैसे तो आम तौर पर ये जगह घूमने के लिए होती थी और रोज़ यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन शाम का वक्त और वर्किंग डे था, इसीलिए यहाँ इस वक्त बहुत ही कम लोग मौजूद थे। नम्या गाड़ी से उतरकर रेलिंग के पास खड़ी होकर नीचे गहरी खाई को एकटक देखने लगी और उसके जहन में करण के साथ बीते वक्त की बातें और लम्हे किसी चलचित्र की भांति चलने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी आने वाली जिंदगी के सारे ख्वाब इस तरह से टूटकर बिखर जाएंगे। दो दिन बाद जहां उसकी जिंदगी हसीन ख्वाबों के साथ एक नए मुकाम पर बढ़ने वाली थी, वहीं आज दो दिन पहले ही उसकी जिंदगी के सारे रंग इस तरह से फीके पड़कर धुंधले हो गए थे। सब कुछ सोचते सोचते कब नम्या की आंखों से आंसू बहकर उसके खूबसूरत गालों पर आ गए, उसे महसूस ही नहीं हुआ। अगर ये कहा जाए कि दिखने से लेकर सोचने तक वो बहुत हद तक रिदांश का मिनी वर्जन थी, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रिदांश की तरह ही उसे भी अपने इमोशंस लोगों के सामने दिखाने से चिढ़ होती थी और इसका गुस्सा भी रिदांश की तरह ही सातवें आसमान पर पहुंच जाता था। बस अगर इसके लिए दुनिया में कोई चीज मायने रखती थी, वो थे सिर्फ उसके रिश्ते, और जिनमें रिदांश उसके लिए सबसे पहले था। नम्या की तरह ही आयुष और प्रिशा भी रिदांश के हर हुक्म को सर झुकाकर मानते थे, क्योंकि भले ही रिदांश उनका बड़ा भाई था, लेकिन उसने हमेशा इन्हें हर कदम पर एक पिता की भांति संभाला और जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया। यही वजह थी कि उन तीनों के लिए रिदांश की हर बात पत्थर की लकीर जैसी होती थी। नम्या अपनी ही ख्यालों में गुम थी और उसकी तंद्रा तब टूटती है जब अनिकेत उसके कांधे पर अपना हाथ रखता है। वो अच्छे से समझ रहा था कि वो भले ही ना कहे, लेकिन इस वक्त नम्या अपने दिल टूटने की वजह से बहुत ही तकलीफ और दर्द से गुजर रही है। अनिकेत के वहाँ आने के बाद भी नम्या शून्य को ही निहार रही थी। जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारा दर्द और तकलीफ असहनीय है, लेकिन आज के कुछ दुख और तकलीफ आगे की जिंदगी की बेहतरी के लिए जरूरी होते हैं। एक, ये दुनिया ना सिर्फ दिखावे की है, यहाँ हर कोई सिर्फ आपके जज्बात और हालातों का मजाक उड़ाता है। बचपन से लेकर अब तक मैंने इस दुनिया का वो घिनौना चेहरा देखा है कि मुझे नफरत हो गई है सबसे, और जो कुछ भी उस घटिया इंसान ने मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरा पूरी दुनिया से विश्वास ही उठ गया। आज मेरा दिल टूटा नहीं है, बल्कि मेरे सीने में ही पत्थर बनकर कहीं दफन हो गया, और अब इसमें सिर्फ लोगों और इस दुनिया के लिए नफरत और तिरस्कार ही बाकी रह गया है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बिकॉज आई नो कि चाहे हालात जैसे भी हों, हमारी टाइग्रेस उससे लड़ना अच्छे से जानती है। वो कुछ वक्त के लिए थक जरूर सकती है, लेकिन हार कभी भी नहीं सकती। मैं अगर हारना भी चाहूँ ना, तो मेरे भाई का प्यार मुझे कभी हारने नहीं देगा। मैं अपने दुख से अपने भाई को तकलीफ कभी नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि मेरी आँख का तकलीफ भरा एक आंसू भी मेरे भाई के दिल को छलनी कर देगा, और मैं एक घटिया इंसान के लिए अपने भाई को तकलीफ हरगिज नहीं दे सकती। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एक पल रुक कर, अब घर चलें? चलो। दूसरी तरफ गाड़ी में रिदांश से पूरी बात सुनकर आर ना तो स्पीचलेस ही हो गई थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या रिएक्ट करे, इसीलिए उसने रिदांश की बात पर कोई प्रतिक्रिया ना देकर बस खामोशी ही साधी रही। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। लिविंग एरिया में अभी कुछ देर पहले अनिकेत के साथ आई नम्या कल्पना जी और प्रिशा के साथ बैठी थी। अनिकेत को कुछ काम था, इसीलिए वो बाहर से ही वापस चला गया था। रिदांश भी आर्णा को लेकर वहीं आ जाता है और वहां आकर नम्या के चेहरे की उदासी को पढ़ने की कोशिश करने लगता है। प्रिशा को भी अनिकेत ने यहां आने से पहले फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। भले ही नम्या हमेशा से आर्णा के साथ बुरा व्यवहार करती आई थी, लेकिन एक औरत होने के नाते इस वक्त आर्णा नम्या की तकलीफ़ को भली भांति समझ पा रही थी और उसे इस वक्त वाकई में नम्या के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। पूरे घर में नम्या के इस तरह से दिल टूटने को लेकर उदासी का माहौल छाया था। नम्या खुद पर रिदांश की नज़रें देखकर वहां से फ्रेश होने के बहाने चली जाती है। कुछ देर बाद समांता वहां आकर डिनर रेडी होने की बात बताती है। अरे आज मुझे भी यही खाना है सबके साथ बाहर। क्यों नहीं, बिल्कुल आप भी यही सबके साथ खाइएगा। तो फिर चलो जल्दी से चलें। जी चलिए। आर्ना समांता के सहारे और कल्पना जी का हाथ थामकर डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है। आपको नहीं लगता भाई कि भाभी की वजह से माँ के बर्ताव में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? पहले वो किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती थी और आज खुद हमारे साथ वक्त बिताना चाहती हैं। भाभी के आने के बाद ही हमें माँ की करीबी महसूस हो पाई है। वो अपने साथ इतना सब होने के बाद भी हमारे और हमारे घर के लिए सिर्फ अच्छा ही सोचती आई हैं और आज भी कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से नम्या दी करण जैसे घटिया और धोखेबाज इंसान के जाल में फंसने से बच पाई हैं। मैं मानती हूँ भाई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो कुछ भी हुआ उसमें बेशक नम्या दी की भलाई ही छुपी है, लेकिन एक सच ये भी है कि उनका दिल तो टूटा है ना, उन्हें तकलीफ तो हुई है ना। इस बात से तुम कहना क्या चाहती हो प्रिशा? भाई आप मुझसे कहीं गुना ज्यादा समझदार हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कहीं आपसे जाने अनजाने में किसी मासूम का दिल इतना ना दुख जाए कि उसके दुखे दिल की हाएं आपकी बहन की खुशियों के आड़े आ जाए। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई कभी भी जानबूझकर किसी मासूम को सता सकता है या फिर वो हार्टलेस है? नहीं भाई, आप तो हमारा गुरूर है, हमारा विश्वास, हमारा वजूद है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप कठोर दिल हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक बार अपने गुस्से को अलग हटाकर भाभी को जानने की कोशिश तो कीजिए, उन्हें एक मौका तो दीजिए। हो सकता है आपका उन्हें जानने और देखने का नज़रिया बदल जाए। आखिर आपकी भी तो दो बहनें हैं ना, ऐसे ही वो भी तो किसी की बेटी है। उनसे उनकी खुशियाँ मत छीनिए। बस एक बार आप उनसे रिदांश अग्निहोत्री ना बनकर बस मेरे भाई जैसे असल में है वैसे बनकर मिलिए और उनसे ऐसे ही पेश आए। प्रिशा भी ये सब कह ही रही थी कि एक बार फिर समांता उन दोनों को खाने के लिए बुलाने आती है और रिदांश बिना कोई जवाब दिए प्रिशा के साथ ही डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है, जहां आर्ना पहले से ही कल्पना जी को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। जैसे ही उसकी नज़र रिदांश पर पड़ती है तो वो फौरन कुर्सी का सहारा लेते हुए वहां से खड़ी हो जाती है। उसे अचानक ही याद आ गया था कि उसे यहां बैठने की परमिशन नहीं थी और वो चोट लगने से पहले वो हमेशा ही नीचे जमीन पर ही बैठकर खाती थी। जैसे ही आर्ना लड़खड़ा कर वहां से एक कदम बढ़ाने को होती है कि रिदांश की आवाज से वहीं रुक जाती है। वेयर आर यू गोइंग? वो कमरे में। तुम्हें पता है माँ तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रुकेंगी, तो यहीं रहो और माँ के साथ तुम भी अपना खाना खत्म कर लो। आर्ना अपना सर हाँ में हिलाते हुए जैसे ही नीचे बैठने के लिए झुकने को होती है कि रिदांश उसका हाथ थामकर उसे पास वाली कुर्सी पर बैठा देता है। सिट हियर।
रिदांश का मूव देखकर जहाँ प्रिशा के होंठों पर प्यारी सी खुशी भरी मुस्कान तैर जाती है, वहीं आर्ना को आज रिदांश और उसकी बातें शौक पर शौक दिए जा रही थीं और अभी भी रिदांश का उसे सबके साथ यूं बैठाना किसी बड़े शौक से कम नहीं था और वो एक टक हैरानी और अविश्वास भरी निगाहों से रिदांश को घूरने लगती है। खाने का मेन्यू मेरे फेस पर नहीं लिखा है? रिदांश की बात सुनकर आर्ना झेप कर अपनी नज़रें उस पर से हटा लेती है और चुपचाप अपनी जगह बैठ जाती है। नम्या कहाँ है? मास्टर, उन्होंने कहा है कि वो अभी आ रही हैं। कुछ देर बाद नम्या भी सबके बीच वहां आ जाती है और आर्ना को सबके बीच बैठा देखकर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। खाने के वक्त पूरे टाइम बस सबके बीच खामोशी ही पसरी हुई थी, हालांकि जो इस वक्त माहौल था उसके बाद सबकी भूख पहले ही मर चुकी थी और अब डाइनिंग टेबल पर सब बस खाना पूर्ति ही कर रहे थे। खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रिदांश जब चेंज करके वापस आता है तो आर्ना वहीं बेड पर बैठी अपनी उंगलियों से खेल रही थी, या यूं कहें कुछ सोचकर नर्वस हो रही थी और कुछ कहना चाहती थी, और जिस बात का मतलब इतने वक्त में अब रिदांश भी समझ चुका था। क्या कहना है कहो। मैं जानती हूँ कि ये आपका पर्सनल फैमिली मैटर है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस वक्त आपकी बहन को आपके सपोर्ट और आपकी ज़रूरत है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें सिर्फ हमारी ज़रूरत होती है, क्योंकि हालातों से लड़ने के लिए खुद को खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को एक स्पेस की ज़रूरत होती है, जहां उसको खुद गिरकर खुद ही संभलने की सख्त ज़रूरत होती है। और रही मेरे सपोर्ट की बात, तो मेरी बहन के साथ हमेशा मेरे सपोर्ट की ताकत थी और रहेगी भी, इतना कहकर रिदांश सोने के लिए अपनी साइट जाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद आरना भी अपने साइट की लाइट ऑफ करके अपनी साइट लेट जाती है। काफी देर बाद भी जब आरना को नींद नहीं आती तो वो अपनी करवट बदल लेती है और अपने एक हाथ को अपने गाल के नीचे रख लेती है और अनायास ही उसकी नज़र सोए हुए रिदांश के चेहरे पर ठहर जाती है, जो हर तरह से परफेक्ट था। उसकी खूबसूरत बंद आँखें, उभरी हुई आईब्रो, पॉइंटेड नोज, बारीक पिंक लिप्स, उसकी शार्प जॉ लाइन्स के साथ उसकी हल्की बियर्ड उसे किसी भी एक परफेक्ट मॉडल से भी कहीं ज्यादा हॉट एंड हैंडसम दिखता था। आरना की नज़रें रिदांश के चेहरे पर ही टिक सी जाती हैं। आपको समझना इतना मुश्किल क्यों है? जब भी लगता है कि मैं आपको समझने लगी हूँ, तभी आप कुछ ऐसा कर देते हैं कि एक झटके में ही मेरा पूरा नज़रिया बदल जाता है। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ पल बाद अनायास ही रिदांश के होंठों को देखते हुए, जब नफ़रत में इतनी शिद्दत है तो कयामत ही हो जाए गर जो ये मोहब्बत निभाए। ओ, आरना अभी अपने ख्यालों में गुम रिदांश के चेहरे को ही एक टक देखे जा रही थी कि अचानक ही बंद आंखों के साथ ही रिदांश की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, अगर तुम्हारा घूरना पूरा हो गया हो तो नाउ स्लीप। रिदांश की बात सुनकर आरना झेंपते हुए जल्दी से दूसरी तरफ करवट करके अपनी आंखें कसकर मींच लेती है।